لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما لا بقية الله في الأرضين، أجل اللهم له الفرج مبات. فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطقي عن الهوى إلا أن وحيا يوحى. صلوات ہمارا حبیب کچھ نہیں بولتا ہے، وہی بولتا ہے. الا ان وحی یوہا، جو وہی بولتی ہے. اب اس کے حوالے سے اگرچہ فی الحال تو ہماری گفتگو معراج کے واقعے پہ ہو رہی تھی، لیکن بہرحال یہ پورے دین، پوری شریعت، پورے اسلام کا خلاصہ اور سمری. جب تک کہ آدمی کو رسول پر اتنا ٹرسٹ نہ ہو کہ وہ جو کہیں گے وہ صحیح ہوگا، چاہے اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، جب تک اتنا ٹرسٹ نہ ہو دین پہ عمل نہیں ہو سکتا. تو معراج کی روایت پورے اسلام پر عمل کرنے کے لیے سب سے اہم روایت ہے. یہ وہ ٹرسٹ پیدا کر رہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. البتہ یہاں پہ رک کے میں دو باتیں بہت جلدی جلدی بیان کروں. پہلی گزارش ان مومنین اور مومنات سے ہے جو انٹرنیٹ پر یا یوٹیوب وغیرہ پہ یہ والے عشرے کی مجالس سن رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اکثر میری مجالس سنتے رہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہر چیز سنی بھی لگتی ہے، اور ادھر جو مجمع میرے سامنے ہے جس کی خدمت کے لیے میں آیا ہوں، ان لوگوں کی کچھ اور خواہشات ہوتی ہیں. بعض اوقات بلکہ اکثر مجھ سے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ مولانا وہ فلا چیز آپ پڑھ دیجئے جو آپ نے کہیں پڑھی تھی، ہم نے خالی اس کی سمری کسی سے سنی. تو اب میں ان مومنین کا خیال کروں جنہوں نے اتنی زحمت برداشت کر کے مجھے اتنی دور سے بلایا، اور یا ان لوگوں کا خیال کروں کہ جو آرام سے اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے مجلس کو سن رہے ہیں، اور وہ ایک طرح سے عبادت بھی ہے اور کچھ لوگوں کی ہابی بھی. تو بہرحال میرے سامنے وہ مجمع زیادہ اہم ہے جس کی خدمت کے لیے میں اتنی دور سے آیا ہوں. یہ بہت ہی مختصر بات. دوسری گزارش یہ ہے کہ ایک سوال میری تیسری مجلس کے بارے میں پوچھا گیا، لیکن مجھ تک یہ سوال بہت لیٹ پہنچا، اور پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا ہے کہ جن کا یہ سوال ہے وہ اس مجمع میں نہیں، تو اس لیے جواب دینے کی فی الحال میں ضرورت محسوس نہیں کر رہا، لیکن اگر وہ اس مجمع میں ہیں تو بعد میں اطلاع کر دیں تاکہ کل اس کا جواب مختصراً آ جائے. معراج کے واقعے سے آج کی جو جدید ترین سائنٹیفک ریسرچ ہے ٹائم کے بارے میں، اس کے بہت سے مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن ایام عزا کی ان مجالس میں جو مجمع میرے سامنے، یہ کوئی سائنس وائنس تو سننے نہیں آئے، یہ ہمارے یوتھ کے لیے مناسب موضوع ہے کہ جنہیں ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنے کالج اور یونیورسٹی میں. آپ کی اکثریت تو گھر سے مسجد، مسجد سے گھر، جو ایج گروپ میری مجالس میں آتا ہے. تو میں زیادہ اس کے اس پہلو پہ نہیں جا رہا ہوں، لیکن صرف ایک گزارش معراج کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے इन नॉन ह्यूमन हिस्ट्री। अब हमारे यहां तो हिस्ट्री शुरू होती है हजरत आदम से, लेकिन जो सेकुलर किस्म के या एथिस्ट किस्म के हिस्टोरियन हैं या एक आम हिस्टोरियन, उनके पास जहां से भी हिस्ट्री आई हो, वो कहते हैं कि नॉन ह्यूमन हिस्ट्री में आइंस्टाइन से बड़ा ब्रेन और उससे बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं गुजरा। मेरी फील्ड नहीं है, लेकिन इतना तो मुझे पता कि ये बात 100% सही हो कि ना हो, फर्स्ट 5 में तो उसका नाम आएगा। और आइंस्टाइन आगाए बुरोजर्दी, जिनकी तकलीद में अभी भी स्टिल बहुत सारे ऐसे मोमिनीन और मोमिनात हैं जो उनकी तकलीद कर चुके हैं, बल्कि इसके फौरन बाद ये चौथी बात मैं कहने वाला हूं आज की मजलिस के असल टॉपिक से पहले एज ग्रुप के हवाले से, तो तीसरी बात यह है कि जो एज ग्रुप आता है इनमें से बहुत से आगाए बुरोजर्दी की तकलीद कर चुके हैं। और मैं कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता, इसलिए अब जो बात कह रहा हूं उस पर अमल आपको नहीं करना, और अगर दिल चाहे तो उलमा से पूछ लीजिएगा, और शायद बाज मोमिनीन और मोमिनात पे स्टिल वाजिब हो कि उनके मसाइल पे अमल करें, लेकिन इसको छोड़ दीजिए। ये आगाए बुरोजर्दी के हाथ पर आइंस्टाइन ने जब इस्लाम कबूल किया और शियत को इख्तियार किया, उसका रीजन सिर्फ मेराज का वाकया था। हमारी मर्जियत कितनी स्ट्रांग होती है, और हमारा मर्जियत का विजन और मर्जियत की खिदमत सर्विसेज जो इस्लाम को दी वो क्या, पैगंबर की मशहूर हदीस मर्जियत के बारे में भी हमारी कौम की एक ट्रेजेडी, अन्नास व आदा बिमा जहिल, जब लोग किसी चीज से जाहिल होते हैं, जब उन्हें उसकी डिटेल नहीं पता होती तो वो खुद ब खुद उसके दुश्मन बन जाते हैं। हम लोग जानते ही नहीं कि मर्जियत किस चीज का नाम, हम तो समझते हैं कि नजफ या कुम्मे 80-90 साल का बूढ़ा आराम से बैठा हुआ है, अब उसके पास ना फिजिकल फिटनेस है ना मेंटल वो शार्पनेस है, और उसको पता भी नहीं कि कुम्मे उसके घर के बाहर क्या हो रहा, यानी दुनिया में क्या हो रहा, जैसा उसका मूड होता है उसने एक फतवा दे दिया ये ख्याल किए बगैर कि मसलन वेस्ट में हमारे बच्चे या बच्चियों को जो चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं ये फतवा तो इसमें प्रॉब्लम और बढ़ा देगा, हम ये समझते हैं। ना हमारे पास टाइम है कि हम उनके हालात और उनका कंट्रीब्यूशन और उनका रोल समझें। भाई मर्जे तो अपनी तमाम तर अजमत और ग्रेटनेस के बावजूद नथिंग इमाम के सामने, हमारे पास इमाम के हालात पढ़ने और समझने का टाइम नहीं है। चौथे इमाम के बाद के जो मासूमीन है उनमें से कितनों के हालात हमको मालूम है, और जो थोड़े बहुत हालात और वाकयात मालूम है उसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से क्या ताल्लुक। कुछ मोजिजात मालूम है हमें इमाम के, कुछ मसाइब मालूम है हमें इमाम के, लेकिन खुद इमाम ने इमामत की क्या ड्यूटी अंजाम दी। छोटी सी एक बात, क्योंकि बहुत मशहूर बात है, अभी हमारा ये नौजवान मेरे खुतबे से पहले आका हुसैन के हवाले से जो शेर पढ़ रहा था, तो मसलन हुसैन क्या, अब हुसैन का जो इंट्रोडक्शन ज़ियारत वारिसा के एक ऐसे जुमले में किया गया जो हर एक को याद है, मगर कभी उस पर गौर किया कि उसमें हुसैन का क्या इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। अशहदो अन्नकल इमामुल बर अत्तकी अर्रजी अज़की अलहादी अलमहदी, ज़ियारत वारिसा का ये बहुत अहम जुमला, और आका हुसैन का जो इंट्रोडक्शन इसके अंदर है उसको समझना हमारे बच्चों और जवानों के लिए भी जरूरी और बूढ़ों के लिए। लेकिन चूंकि आज की मजलिस अभी इस पर नहीं है, शायद आखिरी मजलिस या सेकंड लास्ट मजलिस में मैं इस तरफ आ जाऊं, तो मासूमीन का वक्त, मासूमीन का रोल वो हमें नहीं मालूम, तो मराजे तो बहुत बाद में आते हैं और मासूम के सामने तो मर्जे की कोई हैसियत नहीं, मगर मासूमीन के हालात और वाकयात हमको नहीं मालूम, हर इमाम के तीन चार बहुत मशहूर वाकयात बस। लेकिन हमारे वालिदैन का कंट्रीब्यूशन हमारे जीन्स और डीएनए में मासूमीन की मोहब्बत मौजूद है। मरजियत के हवाले से ऐसा नहीं है, इसलिए जब मरजियत के हालात नहीं पता तो हम खुद ब खुद उनके दुश्मन बन जाते। मगर बाकी बातों को छोड़िए, आइंस्टाइन अजब ऐसे मेंबर से यूं तो बड़े बड़े क्लेम और दावे कर देना आसान है कि जी आइंस्टाइन शिया हो गया था, लेकिन आप यूट्यूब पर जाइएगा तो तीन चार जगह पे आइंस्टाइन की शियत का वाकया है, मगर एक ऐसा जो पूरे वो तमाम डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस के साथ है। मेरे पास वक्त भी नहीं है और शायद जो मजमा मेरे सामने है उसको इससे ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। भाई आइंस्टाइन शिया हो के ना हो इससे हमारा क्या ताल्लुक, हमें सही शिया होना चाहिए मौलाना, हमें तो वो बात बताए, और यही मेरा अपना सब्जेक्ट होता, इसलिए मैं यहाँ पे बात को रोक देता हूँ। लेकिन कभी कभी बाज नौजवानों को शौक होता है, वो जाके ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं और मराजे की मोहब्बत और इस्लाम पर उनका ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। तो एक दो मिनट की मैंने आपको ये जहमत दी आइंस्टाइन के हवाले से, लेकिन वो जो भी वाकया हो, जो भी उसके एविडेंस हो, जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हो, उन सबका खुलासा यह है कि शियत उसने कबूल की है मेराज के वाकये में पैगंबर की वो स्पीड जो लाइट स्पीड से भी ज्यादा थी, और उस मेराज के वाकये को उसने माना, मोमिन नहीं मानेगा। कब? जब ये चौथी बात के बाद मैं आता हूं। चौथी बात यह कि कल की मजलिस के बाद, खाली कल की नहीं है लेकिन कल की मजलिस के बाद मुझे एक ही वक्त में दो कमेंट्स मिले। पहला यह कि मौलाना बहुत करीब है, अब तो जरा कुछ मजलिस के अंदर लीनियंसी पैदा करें और कुछ जरा रहमत का तस्किरा करें। गर्चे मैं नहीं समझ पाया कि जिन बुजुर्ग खातून ने यह पैगाम भिजवाया है वो अपनी मौत के बारे में कह रही थी कि मेरी मौत के बारे में, इसलिए कि मैं भी जवानी से बुढ़ापे में आ चुका हूं, और उनके स्टाइल से भी लगा कि वह जवानी से बुढ़ापे में आ चुकी है। वैसे तो दोनों ही की मौत करीब है। और दूसरा कमेंट्स ये मिला कि मौलाना इस साल आप जरा ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, बहुत ही आपकी मजलिसें जो हैं वो हल्की फुल्की हैं, कोई सख्ती कोई अजाब कोई ये बात इसमें आई नहीं रही। ये कंप्लेन बाकायदा बहुत सीरियस और बहुत मोहब्बत करने वाले ने, एक ही मजलिस के बाद ये दो मुतजाद किस्म के कमेंट्स आए। लेकिन मेराज के वाकये के हवाले से शायद दोनों की कंप्लेन दूर हो जाएगी। मैं मेराज पे तकरीर नहीं कर रहा हूं, मेराज पे तो मैंने 15 तकारीर की, वो तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, सिर्फ उसका वो हिस्सा जिसका इख्तिताम दूसरी दुआ पर है। मेराज की रात अल्लाह के रसूल ने बहुत दुआएं मांगी होंगी, दो दुआएं बहुत अहम, एक अपने लिए एक हमारे और आपके लिए। अपने लिए तो वही दुआ मांगी, قل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، کہ اے خدا، یہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں، واجعلنی نی نی میرے لیے، اے خدا میرے لیے ایک طاقتور مددگار قرار دے۔ اور وہ نام علی ہمارے سامنے آیا سدرۃ المنتہا سے آگے کعبہ قوسین کی منزل پر، مزید کچھ بات اور بھی ہوگی لیکن یہ ولایت علی۔ اور دوسری دعا پیغمبر نے हमारे और आपके लिए मांगी, और यह दूसरी दुआ पहले मांगी मैंने जो प्रोटोकॉल है हिफ्ज मरातिब है उसके एतबार से, मौला का जिक्र पहले किया आपका जिक्र बाद में किया, सीक्वेंस के एतबार से उल्टा सीक्वेंस, पैगंबर ने पहले दुआ हमारे और आपके लिए मांगी और फिर अली की विलायत के हवाले से हमारे और आपके लिए दुआ इस तरह मांगी कि जब सातों आसमानों को क्रॉस किया, बेरी के दरख्त पर पहुंचे उसे क्रॉस किया, जिब्राइल भी रुक गए, पर्दे हटे, पैगंबर उस मंजिल पे पहुंचे जहां अल्लाह और रसूल के अलावा कोई नहीं है, अल्लाह की सारी अजमतें देख रहे हैं, सिजदे में गिर रहे हैं, नमाज बन रही। और ये मैं बता दूं कि जैसे दुनियावी एतबार से मैं इस वक्त मैं टेम्परेरी तौर पर रह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया में, और आप लोग हैं यहाँ पे, आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, मैं साउदर्न में, उल्टा है सारा निजाम। आपके यहाँ गर्मी है तो हमारे यहाँ सर्दी होती, जब आपके यहाँ सर्दी होती है तो हमारा 45, 48, 50 टेम्परेचर चल रहा होता। आपके यहाँ दिन होता है, हमारे यहाँ रात। आपके यहाँ इस वक्त रात है, मेरे यहाँ इस वक्त दिन है। यही मसाला जमीन और आसमान का, आसमान और जमीन के अंदर। बाकी और चीजें तो मुझे नहीं मालूम, या मालूम भी है तो आज टाइम नहीं है। जब यहाँ पे दिन होता है तो वहां रात होती, जब यहाँ पे रात होती है तो वहां पे दिन होता। अल्लाह के रसूल यहां से चले तो रात थी, वहां पहुंचे तो दिन था। पैगंबर ने आसमानों पर जो पहली नमाज पढ़ी वो जोहर की नमाज थी, आसमान पर जो पहली नमाज पढ़ी गई जोहर की नमाज। इसीलिए हमारे यहां जब नमाज की सीक्वेंस मुज्तहिद बताता तो वो जोहर से स्टार्ट करता है, फजर पे खत्म करता। हम लोग स्टार्ट करेंगे फजर से, फिर जोहर, असर, मगरिब, ईशा। अब इसमें बहुत सारे फिकही मसाइल भी, लेकिन ये जैसा मैंने कहा कि ये मेंबर मुहर्रम के पहले 10 दिन में फिकही मसाइल बयान करना पॉसिबल नहीं है वक्त की कमी की वजह से, और खास तौर पर आज से बड़ी रातें भी शुरू हो गई। लेकिन मुख्तसर बात के यहां का और वहां का अपोजिट है सिस्टम। पैगंबर पहुंची और फिर वह नमाजें बनी, लेकिन जैसे ही अल्लाह ने कहा मांग, ऐ मेरे हबीब क्या मांगता, मैंने तुझे वहां पहुंचाया जहां आज तक कायनात का कोई इंसान न पहुंचा है न कभी पहुंचेगा, न पास न फ्यूचर, कयामत तक तू यहां आ गया, मांग क्या मांगता। पैगंबर को क्या मांगना चाहिए, हमसे कहा जाए तो हम क्या मांगते हैं? अपने लिए मांगते हैं, अपनी फैमिली के लिए मांगते हैं, अपनी औलाद के लिए मांगते हैं। जब हमसे कहा जाए कि मांग क्या मांगता, करबला पहुंच के पहली दुआएं अपने लिए होती है, फिर दूसरों के लिए। इस्लाम में सिर्फ एक दुआ ऐसी जिसमें हुक्म है पहले अपने लिए मांगो फिर दूसरों के लिए, वो है गुनाहों की, कि गुनाह अपने पहले याद करो, दूसरों के छोड़ ही दो। रब्बना अग़फिर ली वल वालिदैय्य वल मुमिनीन। लेकिन बाकी हाजतों की दुआ पहले दूसरों के लिए। लेकिन हम आम हालात में भी इस वक्त नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस इसका ख्याल नहीं रख पाते। पैगंबर तो वहां तक पहुंचे कि आज तक कोई इंसान नहीं गया, और कोई इंसान वहां जहां पैगंबर पहुंचे हैं वहां की जो अजमत है बर्दाश्त भी नहीं कर सकता, मर जाएगा अगर हम और आप वहां जाए, मर जाएंगे हम। कहा मांग क्या मांगता है, पैगंबर ने अपने लिए नहीं मांगा, अहले बैत के लिए नहीं मांगा, आपके लिए मांगा। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, रब्बना ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिह वाफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना। पहली दुआ जब बेरी के दरख्त से आगे बढ़े, सारे पर्दे हट गए, बीच में बहुत पर्दे भी थे, हर पर्दे के हटने पे पैगंबर एक अल्लाहु अकबर कहते, सात अल्लाहु अकबर बात आ चुकी। पहली दुआ जो मांग रहे हैं, खुदा कहता है मांग क्या मांगता है मेरे हबीब, पहली दुआ ये मांगी, ये दुआ किसके लिए? सूरह बकरा की आयत नंबर 286 आखिरी आयत, क्या है ये दुआ? ये अव्वल से आखिर तक ये दुआ रहमत ही रहमत। रब्बना ला तुआखिज़ना, ऐ खुदा भूले से अगर हम कोई काम कर ले तो हमें इसके ऊपर पकड़ना नहीं, क्वेश्चनिंग ना हो, सवालो जवाब ना हो। सवालो जवाब दो दफा होंगे, या कब्र में मुनकिर और नकीर आके सवाल करेंगे। वो खाली अकीदे का सवाल नहीं है, उसके बाद अमल का भी सवाल। ये इमाम ने कहा ना कि जब अकीदे के सवाल हो जाएंगे फिर पूछा जाएगा कि जिंदगी कैसे गुजारी, और दूसरा सवाल और जवाब होगा मैदान कयामत में। यहां पे एक छोटी सी फिकही बात और एक बहुत मशहूर हदीस। करबला मौला की जियारत के लिए साहिबान ईमान तैयार हो रहे हैं, बल्कि बहुत से निकल चुके हैं, 40 में इससे ज्यादा लोग आएंगे और सारा साल यह सिलसिला रहेगा। और क्या कहना करबला की जियारत का, वो जो आपने रिवायत में एक जुमला दो बार सुना, एक जुमला है दो बार, पहला मेराज की रात का है, दूसरा करबला का। करबला हमारे और आपके लिए, हमारी मेराज करबला ही है। कायनात में दो ही जगह तो ऐसी जिसको एहतराम में मोअल्ला कहा जाता, एक अर्शे मोअल्ला है, एक करबलाए मोअल्ला। नाना आसमान पर गए तो अर्श को मौला बना गए, नवासा जमीन पे आया तो करबला को मौला बना गया। दो ही मौला तो है हमारी मेराज, हम वहां नहीं जा सकते जहां रसूल गए, लेकिन हम वहां जा सकते हैं जहां हमें वैसी ही मेराज मिल जाए। अब रिवायत ये कि मेराज की रात पैगंबर ने आखिरी मंजिल पे खाने काबा देखा असली, और मलाइका उसका तवाफ कर रहे हैं फरिश्ते, और पता चला कि हर वक्त इतनी वहां पे कैपेसिटी है कि 70,000 फरिश्ते हर वक्त तवाफ करते हैं। लेकिन एक बार जिसने तवाफ कर लिया उस फरिश्ते का टन दोबारा आ ही नहीं सका, वो तड़प रहा है कि मुझे एक दूसरा तवाफ भी करना, लेकिन अभी वो फरिश्ते बाकी हैं जिन्होंने एक भी तवाफ नहीं किया। तो इतने सारे फरिश्ते हैं कि एक बार तवाफ करने के बाद दूसरा तवाफ करना है, बिठा दिया गया कि नहीं, पहले उन लोगों का टर्न है जिन्होंने एक भी तवाफ नहीं किया, एक वो है और एक करबला। तड़पते हैं फरिश्ते, हर शबे जुमा फरिश्तों की जमात आती है, लेकिन एक वक्त में अल्लाह सारे फरिश्तों को करबला नहीं भेजता। कायनात का निजाम भी चलाना, गर्चे अल्लाह बगैर किसी फरिश्ते के ही चला सकता, लेकिन एक सिस्टम है। और एक बार जो करबला की जियारत को आ गया, आप में से भी जो एक बार करबला की जियारत को चले गए, क्या उन्होंने कहा कि बस अब दिल भर गया, अब दोबारा नहीं आना? अरे जो अब तक नहीं गया वो इतना नहीं तड़पता है जो एक बार करबला देख के आया है, करबला में रह के आया है, जरिए इमाम की जियारत करके आया, वो ज्यादा तड़पता कि दोबारा हमें कितने जल्द मौका मिल रहा। फरिश्ते भी तड़प रहे लेकिन टर्न ही नहीं आ रही है फरिश्तों की। तो एक करबला के लिए यही जुमला आया और एक आसमान मेराज वहां के लिए ये जुमला आया। हमारी मेराज तो ये, तो अब वो फरिश्ते जब करबला की जियारत करके वापस जाते हैं, तो आसमान पर हर फरिश्ता और जन्नत की हर हूर ये दरियाफ्त करती है कि तुम जियारत करके आए, हमारे लिए वहां से कोई तोहफा और गिफ्ट लाए। अब वो हदीस आपने सुनी कि सवाल किया जाता है क्या चाहिए, तो कहा खा के शिफा चाहिए, और बात बहुत ज्यादा फैल जाएगी। करबला जियारत आज का मौजू नहीं है, तोहफा। करबला की जियारत करके जा रहे हैं, वापस तोहफा मांगते हैं कौन? आसमान के फरिश्ते। आसमान में किस चीज की कमी है? और जन्नत की हूरें, जन्नत में किस चीज की कमी है? लेकिन कहा करबला का तोहफा, करबला का तोहफा, जन्नत में भी बैठकर हमें करबला का तोहफा चाहिए। शबे मेराज पैगंबर पहुंचे, खुदा ने कहा मांग क्या मांगना? पैगंबर ने जो पहला तोहफा अल्लाह से मांगा, गए थे अली की विलायत का ऐलान लाने के लिए। रसूल को पता है कि अली मेरा वली, लेकिन तड़प तड़प के अल्लाह से कह रहे हैं कि वो मुझे ये इजाजत दे दे कि मैं विलायत अली का ऐलान कर दूं। रोका गया, जैसे पहले खुद पैगंबर को अपनी रिसालत के ऐलान से रोका गया, 40 साल की उम्र के बाद इजाजत मिली। विलायत अली के लिए तड़प रहे, विलायत तो है, फिर याद रखिए फर्क, ऐलान मुझे करने दे, उम्मत को बताने दे। वो मेराज की रात गए इसके लिए हैं, लेकिन पहले आपको याद कर लिया। और क्यों याद किया आपको? इसलिए याद किया कि पहले आसमान पर गुनाहगारों का ऐसा अजाब पैगंबर ने देखा, मेरा कलमा पढ़ने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले, जब ये अजाब देखा तो जैसे ही अल्लाह के पास पहुंचे, अल्लाह ने कहा क्या मांगता है? आपको अभी अभी देखा है पैगंबर ने। कितने जल्दी रसूल गए, दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, हिलती रही और वापस भी आ गए। तो अभी अभी देखा, आपके लिए दुआ मांगी, आपसे मतलब मैं। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना और अख्ताना, बहुत अहम ये दुआ। और अगर एक जुमला मैं कह दूं तो शायद कुछ लोग समझ नहीं पाएंगे और उससे जरा निगेटिव इंप्रेशन लेंगे। अजाब के ये मनाजिर दिखाए इसीलिए गए थे ताकि अल्लाह का हबीब पहली दुआ गुनाहगारों पर रहमत की मांगे। यानी अगर अजाब न भी दिखाया जाता तब भी पैगंबर गुनाहगारों के लिए रहमत की दुआ मांगते, लेकिन अल्लाह ने एक जरिया बनाया। और यहां पे रुक के इसलिए एक छोटी सी बात कह दूं कि जिसको शबे मेराज پیغمبر نے اہم ترین دعا بنایا اور اللہ نے اہم ترین گفٹ کیا. آج اسی چیز کو غلط استعمال کر کے لوگ مرجعیت پہ اعتراض کر رہے ہیں. کہاں معراج سے کہاں میں مرجعیت پہ پہنچ گیا. معراج مرجعیت نہیں تھی, معراج ولایت علی تھی. ولایت علی کا کہ ڈیمانڈ اور ریکوائرمنٹ ہے کہ آج مرجعیت کو مانو, لیکن وہ ایک الگ کانٹیکس میں. ابھی تو ایک چھوٹی سی بات. پیغمبر نے پہلی دعا کیا مانگی, ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا. اے خدا اگر ہم سے, مجھے یاد ہے کہ ابھی ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا, رک گیا زیارت کے حوالے سے کیونکہ وقت بہت, میں نے ایک دم گھڑی کو دیکھا تو وقت تو بھاگا جا رہا. یہ بات کل آئے گی جو ابھی رک گئی زیارت کے لیے, لیکن جو اصل موضوع چل رہا کہ اے خدا جو ہم بھول سے غلطی کر لیں, جو آپ کے گجراتی میں لفظ بھول تو رائج ہے, بھول ہو گئی. نسیان مانے ویک میموری, ذہن سے نکل گیا, آئی فار گوڈ. اور اختانا بہت اہم لفظ ہے, یا بھولے نہیں, ہم سے خطا ہو گئی. اب میں اس کو کیسے سمجھاؤں, نہ انگریزی میری اتنی اچھی نہ گجراتی, گجراتی تو خیر مجھے آتی ہی نہیں ہے, لیکن اردو میں بھی بہت مشکل ہے سمجھانا. لیکن بتا یہ رہا ہوں, ہمارے ایک بہت مشہور حدیث ہے, رفع القلم عن تسعة, نو گناہگار ایسے ہیں جن سے اللہ نے قلم کو اٹھا لیا. قلم مانے جو آپ کے کندھے پہ دو فرشتے بیٹھے ہیں, وہ جو لکھ رہے ہیں نا, نو گناہگاروں کے لیے ان کو حکم ہے کہ نہیں لکھو, بند کر دو اپنا پین, روک دو اپنا پین. رفع القلم, نو گناہگار ایسے ہیں جن سے اللہ نے قلم اٹھا لیا, یعنی ان کا عمل نہیں لکھا جاتا. عمل نہیں لکھے جانے سے مطلب گناہ. تو وہ اسی معراج کی حدیث کو آگے بڑھائی, کہ اگر آپ بھولے سے کوئی غلطی کر لے, روزے کے عالم میں ہے, آپ نے بھول سے پانی پی لیا, فوراً فرشتے نے لکھ دیا کس نے گناہ کبیرہ کیا ہے, روزے کے عالم میں پانی پیا ہے, عذاب خدا آپ کے پیچھے لگ گیا, نہیں, بھول کے عالم میں یہ غلطی ہوئی, قلم اٹھا لیا گیا, فرشتے نے نہیں لکھا. یہ پیغمبر کی دعا ہے, ربنا. میں ہر ایک کی دس مثالیں دے سکتا ہوں, لیکن ایک تو وقت کم, دوسرا مسائل فقہ تو بیان نہیں کرنا ہے اس عشرے میں, غلط بھی نہیں ہے لیکن جب ٹائم نہیں ہے تو بھول کے عالم. کتنے ایسے آپ کے گناہ ہیں جو بھول کے عالم میں آپ کرتے ہیں اور اللہ معاف کر دیتا. نمبر دو, خطا. یہ بہت اہم لفظ ہے, اس کو یاد رکھیے گا. یہ معراج کی دعا میں دوسرا لفظ ہے, ربنا لا تواخذنا ان نسینا اور اخطانا, اور رفع القلم میں بھی یہ شامل ہے. ایک معراج کا واقعہ, ایک الگ سے حدیث آئی ہے, نو گناہگار. خطا, جو خطا سے آپ غلطی کریں, یعنی حکم خدا آپ نے توڑ دیا, حکم خدا آپ نے توڑ دیا, فعل حرام آپ نے کر لیا, گناہ کبیرہ انجام دیا, لیکن خطا میں ایک بھول ہوتی ہے, ایک خطا. اب خطا کو سمجھیے, عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے, طے شدہ بات ہے. عید چاہے رمضان عید ہو چاہے حج عید ہو, روزہ رکھنا حرام ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آج عید کا دن ہے, آپ کے لیے شرعی گواہی سے ثابت ہو گیا آج عید کا دن, اور پھر بھی آپ نے روزہ رکھا تو گناہ. اور اگر خطا ہو گئی, یعنی آپ کی کیلکولیشن یا آپ کی گواہی صحیح نہیں نکلی یا نہیں پہنچی آپ تک گواہی, تو آپ تو سمجھتے رہے کہ آج 30th آف رمضان ہے, آپ نے روزہ رکھ لیا, اور بعد میں پتا چلا کہ نہیں عید ہو چکی تھی, آپ سو رہے تھے اس لیے آپ کے پاس انفارمیشن نہیں آئی, آپ نے فون وغیرہ آف کر کے رکھے تھے اس لیے انفارمیشن نہیں آئی. عید سمجھ کے روزہ نہیں رکھا, آپ نے سمجھا آج رمضان ہے, بعد میں پتا چلا وہ عید ہے. یہ خطا, یہ معاف, کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اندر. بلا وجہ اسے ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی اگر ہم فلاں مرجے کی بات مان لے تو عید کے دن ہمارا روزہ ہو جائے گا. یہ وہ معافی ہے جو رسول اللہ معراج کی رات ساتویں آسمان پر پہنچ کر آپ کے لیے لے کے آئے. وہ ایک گفٹ آپ کو دے رہے, آپ کہہ رہے ہمیں نہیں چاہیے گفٹ, اس لیے نہیں چاہیے کہ ہمیں مرجے کو گالی دینا ہے, وہ زیادہ ضروری. या रसूल अल्लाह आपके दूसरे गिफ्ट ले लेंगे, ये नहीं लेंगे, क्योंकि ये गिफ्ट लेने का मकसद यह है कि मर्जी के दोनों फतवे सही माने जाए। यह कैसे हो सकता, हमारा खाना कैसे डाइजेस्ट होगा जब तक कि किसी एक मर्जी को बुरा भला ना कहा जाए। पैगंबर कयामत मेराज की रात ये तोहफा लेकर आए। अब इसमें एक दो मिसालें मैं और दे दूं ताकि ये वाजे हो जाए कि खाली ये ईद का मसाला नहीं। मसाला बहुत मशहूर एक जमाने में किताब थी, बहुत मशहूर, और एक जमाने से मतलब यह है कि कोई 500 साल पहले नहीं, हमारी जवानियों में। Then I was guided, सुम्मा तहदाय, तो बहुत मशहूर किताब आकाइद तेजानी की, उसके अंदर आखिर में एक वाकया, ये वाला वाकया जो है आखिर वाला, ये बहुत इस्लाम में पेश आता पहले खास तौर पर, और वो ये है कि शादी हो रही, चले खैर वहां तो रुखसती से पहले पता चल गया, लेकिन बहुत सारे वाकयात है कि रुखसती के बाद भी बहुत दिनों बाद पता चला कि ये जो शादी हुई, ये लड़का और लड़की एक दूसरे के भाई बहन निकले, शादी के मौके पे नहीं मालूम था। अब वहां तो वो ब्रेस्ट फीडिंग का मसाला था, लेकिन उसके अलावा भी समझ लीजिए, भाई और बहनें अलग अलग हो गए और भूल भाल गए, फैमिली के दो ब्रांचेस हो गई। पहले किसी और तरह से ये होता था, आजकल जब से सेपरेशन बहुत बढ़ गया है, सिंगल पेरेंट फैमिली बहुत बढ़ गई है, लड़का चला गया बाप के साथ, लड़की चली गई माँ के साथ, एक दूसरे की खबर भी नहीं, बाद में शादी हो गई, शादी के 5 साल बाद जब औलाद भी हो गई पता चला ये भाई बहन। भाई बहन की शादी, महरम के साथ निकाह, खाली गुनाह नहीं है, गुनाह एक कबीरा में से एक गुनाह, गुनाह एक कबीरा में भी टॉप ऑफ द लिस्ट। लेकिन क्या इन लोगों को पनिश किया जाएगा, सजा दी जाएगी आखिरत में, कब्र में या दुनिया में, तीनों जगह माफ है। क्यों माफ है, भाई ने बहन से शादी की, बहन ने भाई के साथ फिजिकल कॉन्टेस्ट कायम किए, फिर भी क्यों माफ है। क्या उन्हें नहीं मालूम था खता थी, जानबूझ के शादी को थोड़ी की है। तो ये खता की माफी कहां से मिली है, ये शबे मेराज अल्लाह का रसूल आपके लिए माफी लेके आया। भाई बहन तो खैर बहुत बड़ी बात है, इससे भी बड़ी बात मां और बेटे की शादी भी, बाप और बेटी की शादी भी अगर खता में हो जाए तो वो जो ईद के चांद का मसला है, खाली वो एक पैगंबर माफी नहीं लाए हैं, पूरा एक सिस्टम है इस्लाम का। मेराज की रात पैगंबर आपको अल्लाह की बारगाह से तोहफा लेके दे रहे हैं और आप बाकी तो हर जगह वही तोहफा कबूल कर रहे हैं, मर्जे के फतवे की बात आती है तो आपने छुरियां तेज करके उनकी गर्दन पे रख दिया। अब इसकी एक आखिरी मिसाल दे दूं इसलिए कि भाई बहन वाला मसला आजकल शायद कम पेश आता हो, अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, कॉन्टेक्ट बहुत बढ़ गए हैं, फेसबुक के सैकड़ों नुकसान है, मगर एक फायदा ये है, एक तो फायदा है ना कि फैमिलीज एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आ गई। बहरहाल ये सिला रहमी का एक बहुत अच्छा जरिया बन गया है आजकल फेसबुक। तो कुरान ने शराब के लिए भी कहा कि इसमें फिया मुनाफे और लिन्नास, फायदे भी, तो फेसबुक में भी फायदे हैं। ये इंशाल्लाह एक आध दिन बाद, अब तो बिल्कुल आखिरी तकरीर है, मगर भाई बहन की शादी तो अब शायद जरा मुश्किल हो जाए, इसलिए कि एक दूसरे के हालात का खबर रहती है, अवेयरनेस होती है कॉन्टेक्ट। लेकिन शराब, आपको नहीं मालूम था कि ये जो सामने मेरे ड्रिंक रखा है ये शराब है, आपने उसे ऑरेंज जूस समझा, आपने उसे एप्पल जूस समझा, आपने उसे सिरका समझा और पी लिया, बाद में पता चला कि तो शराब आपने पी ली। बदतरीन गुनाह है शराब। फुज़ैल इब्ने अय्यास के शागिर्द, बहुत ही मुकद्दस, बहुत ही मुत्तकी, पब्लिक के सामने शागिर्द, उनसे पढ़ने के लिए हौजे में एडमिट हुए, बीमार पड़ गए, आखिरी वक्त आया, मोमिन का एक हक है, तो फुज़ैल गए उनको देखने के लिए, बीमार को जाके विजिट करो, गए देखने के लिए, पता चला कि वो मरने के करीब। लेकिन फुज़ैल को जैसे ही देखा तो फुज़ैल ने कहा बेटा अब ये आखिरी वक्त है तो अल्लाह का नाम लो, दुआएं फरज हमारे यहां, आखिरी वक्त की कुछ दुआएं हमारे यहां। जब उन्होंने कहा बेटा कलमा पढ़ो, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना नाराज होता है वो शागिर्द, बीमार, आम बीमार नहीं, बिस्तर से उठने की ताकत नहीं, बातें करने की ताकत नहीं, लेकिन इतना जोश में आ गया कि बिस्तर पे उठ के बैठ गया और कहा मेरे घर से निकल जाओ। अपने उस्ताद से, अपने जमाने के एक बड़े आलिम से, और इंतहाई रूढ़ तरीके से कह रहा कि निकल जाओ। फुज़ैल ने कहा बेटा मैं कलमा पढ़ा रहा हूं, कहा आइंदा अल्लाह का नाम मेरे सामने ना लेना, निकल जाओ, मैं नहीं मानता किसी अल्लाह को। और ये कहा और गिरा और मर गए। फुज़ैल परेशान, एक आम गुनाहगार की भी यह हालत नहीं होती। ये तो इतना पायस रिलीजियस स्टूडेंट, दीन का स्टूडेंट पढ़ने आया, फिर जब मुलाकात हुई ख्वाब में तो उसने कहा मेरे तीन गुनाह थे। मरने के बाद पता चला जो तीन गुनाह करता है आखिरी वक्त में उसका ईमान छिन जाता। अब पहला गुनाह यह था कि मैं शराब पीता था, पब्लिक से छुपकर घर के अंदर। शराब तो वो गुनाह है कि जो आप लोगों से छुपा के कर सकते हैं। तो शराब पीने का जो सबसे बड़ा नुकसान है, आखिरी वक्त में आपका ईमान चला जाता। आपसे मतलब आप नहीं है, ये तो एक स्टाइल है बात करने का। तो अब हमारा असल मौजू तो यही था, ईमान कैसे जाता है, कैसे बचाना। लेकिन आप समझे कि ये एप्पल जूस शराब नहीं, और आपने पी लिया शराब, वो एप्पल जूस पीने के बाद पता चला कि शराब। हर आदमी कहेगा ये गुनाह माफ है, लेकिन ये गुनाह क्यों माफ है, कैसे माफ है? गुनाह तो आपने किया। ये शब मेराज रसूलुल्लाह ने आपके लिए अल्लाह से खास दुआ करके ये तोहफा लिया, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना। अब देखिए यहां दोनों चीजें वाज़ेह हो गई। आपको पता था कि ये शराब है एक गिलास में रखी हुई, आप भूल गए, भूल गए, और आपने पी ली, वो है नसीना। और एक है आपको मालूम ही नहीं, आप तो उसको एप्पल जूस समझ के पी गए, वो है अख्ताना। दो अलग अलग टर्म है फेका की। बाद में हदीस भी आई कि अल्लाह ने इन दोनों गुनाहगारों पर से कलम उठा लिया, इनके अमल नहीं लिखे जाएंगे, जिसने भूल से कोई काम किया, जिसने खत्म। और मेराज की रात, अच्छा मेराज की रात, फिर एक जुमला कह दूं और मसाइब पर जाऊं, वक्त नहीं रहा। और वो ये कि मेराज की रात वो रात है जब अभी शरीयत दुनिया में आई भी नहीं, अभी शराब हराम भी नहीं हुई है। शराब तो मदीने पहुंचने के 34 साल हराम हुई, और बड़े बड़े गुनाह हराम, अभी हराम भी नहीं हुए हमारे एक्शंस, रहमत पहले मिल गई, सहूलत पहले मिल गई, फैसिलिटी अभी से अता कर दी गई। इसे बहुत से लोग ऐसे, उन्होंने आपका कोई काम किया कमीशन बेसिस पर, आपको पेमेंट करने से पहले ही अपना कमीशन काट कर रिमेनिंग बैलेंस आपको दिया। मॉर्गेज वॉर्गेज में भी सुना है कहीं पे ये होता है कि वो इंटरेस्ट की पहले इंस्टॉलमेंट पहले काटी, फिर बाकी आपको दिया। अल्लाह ने शरीयत आपको बाद में दी है, रहमत वाला पहलू पहले ही दे दिया कि भूल और खता इसको काट दिया शरीयत से, फिर बाकी शरीयत आपको दी। मेराज की रिवायतें पढ़िए कि शरीयत मेराज से स्टार्ट हुई और ये तोहफा पहले ही मिल गया। क्यों? वन ऑफ द रीजन, पैगंबर ने गुनाहगारों का अजाब देखा तो तड़प के दुआ मांगी। अब आइए मैं अपनी आज की बात को आखिरी मंजिल पर पहुंचा रहा हूं। मेराज की रात गुनाहगारों का अजाब देखा, तो अजाब जो गुनाहगारों का देखा, आप ये हदीसें सुनते हैं, गाना सुनने वाले का गुनाह और बेपर्दा औरत का गुनाह और मिक्स गैदरिंग में जाने वाले का गुनाह और प्राउडी और घुमंडी आदमी का गुनाह और गीबत करने वाले का गुनाह और रिस्क खाने वाले, हराम रिस्क खाने वाले का गुनाह और फितना फैलाने वाले का गुनाह सुनते ही रहते हैं हदीसें। मैं भी पढ़ देता थोड़ा सा, लेकिन वक्त नहीं रहा, आज हमारा आधा अशरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये पैगंबर ने उसके लिए दुआ मांगी, यही आपके लिए, यही आपके लिए, कि हमें ये सारा अजाब क्यों बताया जाता। वो जो खातून ने कहा कि अब मौत करीब आ गई है, चाहे वो मेरी मौत कह रही हो कि अपनी मौत कह रही, दोनों के करीब आ चुकी है मौत, मगर यह अजाब क्यों पढ़ा जाता? ये नहीं पढ़ा जाता कि आप पर आएगा यह अजाब, ये पढ़ा जाता है कि यह अजाब आ सकता है, चुनाचे उसके बचने की तैयारी कर लो, या अपने आप को चेंज कर लो, या अब अगर चेंज करने का वक्त नहीं रहा। जवानी में बहुत शराब पी थी, अब शराब नहीं पी सकते, डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारा लीवर खराब है, शराब ना पीना, अब तो वैसे ही छोड़ दी, अब वक्त ही नहीं रहा गुनाह से बचने का। लेकिन जो जवानी का गुनाह, तौबा कर लो, अपने आप को चेंज कर लो, अगर स्टिल गुनाह, यह अजाब इसलिए बताया जाता है, इसलिए नहीं बताया जाता कि 100% यह अजाब आप पर आकर ही रहेगा। और फिर यहां पे एक छोटी सी बात, मैं इसलिए बात बहुत बड़ी, मैं इसको बहुत छोटा कह के इसलिए कह रहा हूं कि कल से हमारा सब्जेक्ट मेराज से वापिस आने के बाद क्या हुआ उस पर चलेगा। बहुत ही एक बात बहुत बड़ी, आहिस्ता आहिस्ता कह रहा हूं, पैगंबर नहीं है जिन लोगों को देखा, ये कौन लोग है? अभी शरीयत तो आई नहीं, इसका एक जवाब तो मैंने दे दिया, ये फ्यूचर, जिसको इमाम ने एक और तरह भी समझाया, बाज औकात तुम ख्वाब में फ्यूचर के हालात देख लेते हो, तुम देख लेते हो। हम जैसे गुनाहगार, कभी अल्लाह हमें बाद के हालात अपने ख्वाब में दिखा देता, हम ख्वाब में देखते हैं कि हम बूढ़े हैं और ये काम हो रहा, अभी तो नहीं है बूढ़, अभी तो जवान हो, अभी कल ही तो तुमने अपनी शादी का पैगाम भिजवाया था अपना बच्ची के नाम, तो ऐसे जवान हो कि शादी के लिए तैयार हो लेकिन ख्वाब में अपने आप को बूढ़ा देखा, फ्यूचर। तो जब हम और आप फ्यूचर देख सकते हैं तो पैगंबर और ये आइनिस। दूसरी एक बात और सुनी, ये वो बात है जिसे मैं बहुत डाइल्यूट करके और हल्का करके बता रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा ये एक अलग से सब्जेक्ट, और वो ये मासूमीन की हदीसों में उस वक्त एक जुमला रिपीट होता है जब कोई कह देता है कि मौला देखिए ये आम मुसलमानों को क्या हुआ, आप जैसी अजीम शख्सियतें और पर्सनालिटीज, या आपको नहीं मान रहे, मुआविया को मान रहे, यजीद को मान रहे, मरवान को मान रहे, हशाम को मान रहे, हारून को मान रहे, यानी दुश्मनान अहले बैत के तो नाम ही ऐसे हैं कि दिल में कराहियत पैदा होती है, और मासूमीन के नाम ही ऐसे हैं कि नाम में ही एक नूरानियत, एक तकद्दुस, एक मोहब्बत का पहलू है, ये आपको छोड़कर उधर जा रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में। तो आप इमाम इसके कई जवाब देते हैं जिनमें से एक जवाब तो आपको भी मालूम है कि हक वाले कम बातिल वाले ज्यादा, मगर एक जुमला और कहते और ये कभी कभार कहते और इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं करते लेकिन कहते, कहा कि अगर तुम्हारा क्राइटेरिया ये कि हमें मानने वाले कम है कि ज्यादा, तो दुनिया में तो इंसान कुछ भी नहीं, आसमानों पर अल्लाह ने कितने ही ऐसे शहर बनाए हैं मुख्तलिफ प्लैनेट्स में, मुख्तलिफ गैलेक्सीज में, जहां पे सिर्फ हमारा ही नाम लिया जाता है, वहां कोई और है ही नहीं, तुम तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं हो, हमारे असल मानने वाले वहां हैं। अब यहां से वही बात कि जब मेराज का वाकया पढ़ा गया उस वक्त के बच्चों ने मजाक उड़ाया, आज सब मानते हैं क्योंकि आज साइंस ने प्रूव कर दी, जाबलका साबलका इमाम ने दो शहरों के नाम भी लिए, आसमान पर कहीं ना कहीं इंसानों की तरह से कोई इंटेलिजेंट मखलूक रहती है, और इमाम कह रहे हैं कि वो तो हमको मानते हैं और हम उनको विजिट करके आते हैं, उनमें से भी अमल के एतबार से कुछ गुनाहगार ऐसे हैं जिन पे यह अजाब आ सकता है। पैगंबर ने किसको देखा, अभी मैंने कहा यह बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने छेड़ दी लेकिन हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा। आइए अब इख्तिताम, दो दिन तीन दिन से जो बात मैं कह रहा हूं, जो मेरा असल मौजू नहीं, असल मौजू है ईमान खत्म कैसे होता है, आज एक हदीस, आज एक वाकई आ गए, और ईमान प्रोटेक्ट कैसे होता है, आज उसका भी थोड़ा सा जिक्र आया, लेकिन यूं ऐसा लगेगा पूरी मजलिस मेराज पर हुई। पैगंबर या गुनाहगारों का अजाब देखा, इनके हक में जाके दुआ मांगी, और यानी उनके हक से मतलब हमारे हक में, ये हम हैं, नमाजें हम कजा करते हैं, गाने हम सुनते हैं, बेपर्दा हमारी औरत घर से निकलती है, हमारे लिए पैगंबर ने दुआ मांगी, मगर ये दुआएं तो हो गई एक 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 दो दो मोमिन के लिए। पैगंबर मेराज की रात अल्लाह की बारगाह से अगर विलायत अली का तोहफा लाए तो अपनी रहमत को मुकम्मल करवा के आए, वो वाली रहमत जो हर वक्त हमारे और आपके काम आती है। पहले तो पैगंबर ने हमारे लिए क्या दुआ की, ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना, भूल के, यानी इसका मतलब यह कि जो जानबूझ के गुनाह करे वो माफ नहीं होगा, वो भी होगा क्योंकि आखिर दुआ वाफना वक्फिर लेना वर हमना, जो आखिरी दुआ है ना कि रहमत नाजिल फरमाइए, तो उसके लिए जो जानबूझ के गुनाह करे, जो जानबूझ के अपनी माँ से शादी करे, जो जानबूझ के अपनी बहन से शादी करे, उसके लिए भी पैगंबर ने आखिर में दुआ मांगी, वरहमना रहमत। आखिरी दुआ क्या थी, शुरू कहां से हुई थी, भूल को माफ कर दे, आखिर कहां पे हुआ, रहमत नाजिल फरमा। तो पैगंबर ये सारे तोहफे लेके आए, जब कहा रहमत नाजिल फरमा तो रहमत का दूसरा नाम है फातिमा ज़हरा। ये कैसे कह दिया मैंने, वैसे हर मोमिन अकीदे से मानता है लेकिन दलील के साथ। पैगंबर फरमाते हैं कि अल्लाह जब तुम्हें बेटे देता है ये एक नेमत है, और जब बेटियां देता है तो ये एक रहमत है। बेटियां रहमत है, बेटे नेमत, कयामत में नेमत का जवाब देना है, लतुसअलुन्ना यौमैज़िन अनिन नईम, बेटों का जवाब देना। बेटियां रहमत है, रहमत का कभी जवाब नहीं दिया जाता, रहमत तो बगैर हिसाब दी जाती है। जब हमारी एक आम सी बेटी हमारे लिए रहमत बन रही है, तो रसूल खुदा की फातिमा जैसी बेटी सारी कायनात के लिए रहमत कैसे ना बने। मेराज की रात पैगंबर वरहमना जब कहते हैं तो अल्लाह ने इतनी बड़ी रहमत नाजिल की, अजमत फातिमा को पहचाने, अल्लाह का रसूल कौन है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, रसूल कायनात के लिए रहमत है, फातिमा इस रसूल के लिए रहमत, यह है अजमत फातिमा। मगर बहुत जल्दी अभी मैं बात कह रहा हूं, वरना तो जो मेरी प्लानिंग थी 5 मिनट 7 मिनट इसको जरा समझाना था, लेकिन समझाना बाद में, बहुत जल्दी इख्तिताम पे मैं बात को ला रहा हूं। फातिमा कायनात के लिए भी रहमत है, रसूलुल्लाह के लिए भी रहमत, मगर जो फातिमा हम सब के लिए रहमत बन के आई, रिवायत ही है कि कयामत के दिन जब वो अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगी तो आंसू बहाते हुए पहुंचे, रोते हुए पहुंचेंगे। एक दूसरा, जब जमाने का इमाम जाहिर होगा और रसूलुल्लाह अदालत लगाएंगे, या करबला में या मस्जिद कूफा के दक्कतुल कजा पे, दो रिवायतें, वहां भी फातिमा जब आएंगी बाबा के पास तो फरियाद करती हुई और आंसू बहाती, जो मैं सबके लिए रहमत हूं। उस रहमत के साथ क्या हुआ, उसका बेटा भी मारा गया, उसका पोता भी मारा गया, उसके नवासे भी मारे गए। आज की रात तो इस एतबार से बहुत खास रात है कि आज हमें फातिमा के नवासों का मातम करना। फातिमा के पोते तो आपको हरेक के हवाले से अच्छी तरह से मालूम है, और हमारे यहां खास तौर पर ख्वातीन में एक रवाज है, जनाब अली असगर के झूले पे बहुत मन्नतें मानी जाती हैं, बहुत आजतें, अली अकबर के हवाले से बहुत सारी दुआएं होती हैं, लेकिन अकबर और असगर अगर फातिमा के पोते हैं तो आन मोहम्मद की भी अजमत को कम ना समझिएगा। ये फातिमा के नवासे, फातिमा को जो उस मोहब्बत हुसैन से है वो अकबर व असगर में आई, और फातिमा को जो मोहब्बत जैनब से है वो अनु मोहम्मद में आई। और अक्सर आप ये सुनते हैं, और यहां इस साल के अशरे में भी 2 दिन के बाद से मसाइब शुरू होंगे अली असगर और अली अकबर के, तो आप सुनेंगे कि जैनब हुसैन के बेटों से कितनी मोहब्बत करती, अपने बेटे भूल जाती हैं, अकबर याद रहता। तो क्या ये खाली वन वे सिलसिला नहीं, जैनब अगर हुसैन के बेटे से इतनी मोहब्बत करती है तो हुसैन भी जैनब के बेटे से इतनी ही मोहब्बत करता। हुसैन की मोहब्बत को याद करें, यहां तक आम घरानों में भी ये होता कि अपनी औलाद से ज्यादा बहन की औलाद को तरजीह दी जाती, और हुसैन के बाद भी यही कि जैनब अगर हर जगह अकबर को याद करती है, हुसैन अकबर बेटा पीछे हट जा, ओनो मोहम्मद तू आगे, मेरी बहन की औलाद है, मेरी जैनब की औलाद है, हुसैन और जैनब। लेकिन अजीब बात यह है कि अकबर का मातम सब ने किया, असगर का मातम सब ने किया, कौन मोहम्मद वो है कि उनकी अपनी मां भी उनका मातम नहीं कर रही, बल्कि एक रिवायत अरबईन के बाद पढ़ी जाती है, या अरबईन के दिन जब अहले बैत को रिहाई मिली और वो कटे हुए सर उनको वापस किया गया शाम में, और शाम की औरतें पुरसा देने के लिए आने लगी, तो ये मंजर उन्होंने देखा कि हर कटा हुआ सर किसी ना किसी बीबी की गोद में, जैनब की गोद में हुसैन का सर, लैला की गोद में अकबर का सर, रबाब की गोद में असगर, फरवा की गोद में कासिम, अब्बास का कटा सर उम्मे कुलसूम की गोद में, दो कटे हुए सर हैं जो जिनको उठाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा। किसी ने सवाल कर लिया चौथे इमाम से, फरजंदे रसूल क्या ये लावारिस बच्चे हैं, क्या ये बच्चों का कोई वारिस नहीं है, कोई इनका मातम करने वाला नहीं है, मेरा आका सज्जाद आगे बढ़ा, ये कटे सर उठाने लगे, कहा ये क्या कह दिया, ये लावारिस नहीं है, मैं इनका वारिस हूं। बस जैनब ने देखा कहा सज्जाद इन कटे हुए सरों को हाथ ना लगाना, ये तो मैंने सदका कर दिया, सदका की भी चीज को नहीं छुआ जाता। मां ने करबला से लेके शाम तक जिन बच्चों का मातम नहीं किया, आज उनका मातम आपको करना। और ये जुमला क्यों कहा जैनब ने, हुसैनी काफिला मक्के से जब करबला जाने के लिए निकला, और कैसे निकला, हज को उम्रे से बदला और मेरे आका चले, लेकिन अभी मक्के से 5 मील दूर गए होंगे। अब्बास को बुलाया, अब्बास काफिले को रोक दो। अब्बास का काम अमल करना है, वो सवाल नहीं करते। रोक दिया काफिले को, हुसैन ने कहा अब्बास मेरा खेमा भी लगा दो, 5 मील पर कोई काफिला नहीं रुकता। जो लोग मक्का होके आए हैं उनके लिए बता दूं, जो मस्जिद आयशा या मस्जिद उमरे के नाम से एक मस्जिद है जहां से हम उमरों का एहराम पहनते, ये वहां का वाकया, चंद कदम पर काफिला सुबह निकलता शाम तक सफर करता। रोक दिया हुसैन ने, आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा, मेरा खेमा लगा दो। अब्बास ने खेमा लगा दी, आके कहा कि आका बाकी सारे सवारी के जानवर भी बिठा दूं और सारे खेमे लगा दूं, कहा कि नहीं सिर्फ मेरा खेमा। और अभी अब्बास ये सवाल कर ही रहे थे, हुसैन ने कहा अब्बास बाहर जाओ, मेरा मेहमान आया है, इस्तकबाल करके लाओ। कौन मेहमान इस वक्त आया होगा? अब्बास बाहर निकले तो क्या देखा, जैनब कुबरा की शौहर अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार मक्के से आ रहे हैं, बहुत बूढ़े थे, बहुत बीमार थे। चुनाचे आका हुसैन ने मक्के से निकलते वक्त और मोहम्मद से कहा कि बेटा तुम्हारा बाप बहुत बीमार है, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है, बाप की खिदमत करो। जो इमाम जमाना ने एक जाहिर से जुमला कहा था, हुसैन रोक के आए थे ओनो मोहम्मद को, अब्बास ने देखा जैनब कुबरा के शोहर आ रहे हैं, जैनब कुबरा की अजमत अब्बास से बेहतर कौन जानेगा, बड़े एहतराम से इस्तकबाल करके हुसैन के खेमे में लाए। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने हुसैन को देखा, कहा हुसैन तू उम्र में मुझसे छोटा, मेरे बस में होता तो तेरी पेशानी के बाल पकड़ के तुझे रोक देता, कूफे तो कतन न जाने देता, लेकिन मुझे पता है तू इमाम वक्त, जो काम करता है हुक्म खुदा से करता, मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि एक बार आखिरी रुख्सत दे दूं, ले लूं जैनब को, अपनी बीवी को। हुसैन ने कहा जैनब आपकी बीवी बाहर, उनकी हमारी है, चले जाइए। जैनब को खबर मिली मेरा शौहर आया, शहजादी घबरा गई, ऐसा ना हो कि मुझे वापस ले जाने आया हो, और हुक्म शरीयत है कि बीवी शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं जा सकती। अब जैनब कुबरा के दिल में यह ख्याल कहीं मुझे वापस ना ले जाने आए हूं, इतने परेशान हैं कि अभी अब्दुल्ला ने जैनब की अमारी पर हाथ रखकर खाली सलाम किया, अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह, और जैनब ने तड़प के जवाब सलाम तो दिया, वालेकुम सलाम यबना अम्मी, लेकिन साथ में कहा कि अगर मुझे वापस ले जाने आए हो तो मैं शरीयत की मुखालिफत तो नहीं कर सकती, मगर मुझे न ले जाओगे मेरा लाशा ले जाना पड़ेगा, भाई से अलग होके ये बहन जिंदा नहीं रह सकती। अब्दुल्ला के जवाब से पहले अपना सवाल पेश कर दूं, हाथ जोड़कर कहूंगा शहजादी अभी तो खाली आपके दिमाग में ख्याल आया, शायद मेरा शौहर मुझे वापस ले जाने आया है, तो आप तड़प गई। जब असरे आशूर हुसैन ने आकर कहा होगा, जैनाब मेरा आखिरी सलाम लो, आज भाई और बहन का साथ छूट रहा हो। जैनब कैसे जिंदा रही? याद रखिए, जैनब जिंदा ना रहती उस दिन भी मर जाती अगर हुसैन अगला जुमला ना कहते जो मैं असरे आशूर की मजलिस में पढ़ूंगा। अब्दुल्ला अब्दुल्ला, जैनब की फरियाद सुनी, मैं भाई से अलग होके मर जाऊंगी, घबरा गए। जैनब बीवी बेशक है, लेकिन अब्दुल्ला को पता है जैनब का रुतबा कितना बुलंद है। एक बार हाथ जोड़े और कहा, शहजादी मेरी ये मजाल कि मैं आपको कोई हुक्म दूं? मैं तो इसलिए आया हूं कि मुझे पता है कूफा गद्दारों का शहर है, बेवफाओं का शहर है। मुझे पता है मेरे आका पे वहां बड़ी मुसीबतें आएंगी। हमारे और आपके जद रसूलुल्लाह ने कहा था ना कि जब मुश्किल सफर पे जाओ तो सदके का सामान लेके जाना। मैं तो आपको सदके का सामान देने आया हूँ, ये कह के ऑन को आगे बढ़ाया और कहा कि शहजादी अगर आका पे कोई मुसीबत आए इसे अपनी जानिब से सदका कर देना। मोहम्मद को आगे बढ़ाया, आका पे कोई मुसीबत आए इसे मेरी जानिब से सदका कर देना। करबला से पहले ही ओनो मोहम्मद को सदका बना दिया। ओनो मोहम्मद के अपने बाप ने, ओनो मोहम्मद की अपनी माँ ने, ओनो मोहम्मद करबला का वो शहीद के बाप और माँ दोनों सदका करने को तैयार, यहां तक के आशूर की सुबह आ गई। मैं बहुत जल्दी जल्दी आखिरी मंजिल पे, आज तो शबीये ताबूत भी बरामद होगी, मातम भी ज्यादा होगा, कर आशूर का दिन आ गया। आशूर का दिन एक रिवायत आज भी पढ़ रहा हूं और ये रिवायत शबे आशूर की मजलिस में भी पढ़ूंगा। आशूर की सुबह आ गई, लेकिन नहीं, उससे पहले आशूर की रात। अल्लाह आपको करबला ले गया है और कई बार ले गया। आज भी आपने खेमागाह देखी, खेमागाह में आपने शहजादी जैनब का खेमा भी देखा। आका हुसैन शबे आशूर अपने खेमे से निकले, जैनब के खेमे के करीब से गुजरे तो एक अजीब मंजर देखा। ओनो मोहम्मद को अपने सामने बिठाया और दोनों से कह रही है, बेटा ओनो मोहम्मद कल मैदान में अपनी जबान से कुछ ना कहना, ऐसा जिहाद करना कि यजीद की फौज पुकार उठे, जाफर तैयार के पोते आए हैं, हैदर कर्रार के नवासे आए। और बेटा मुझे पता तुम इतने बहादुर कि जंग करते करते फुरात पे कब्जा कर लोगे, लेकिन जब फुरात पे कब्जा कर लेना वो बहुत छोटे और 3 दिन के प्यासे, खबरदार पानी न पीना, पहले असगर पानी पिएगा फिर तुम्हें पानी पीना। हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। माँ इस तरह से अपनी औलाद को तैयार कर रही। और फिर आशूर का दिन आ गया, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से सूरज ढलने लगा। ओनो मोहम्मद जब कभी भी खेमे में आते हैं, जैनब घबरा के कहती है, बेटा अब तक जिंदा हो? बेटा ओन अब तक जिंदा हो? लाशों पे लाशें आ रहे हैं, तुम्हारा लाशा क्यों नहीं आया? बेटा मोहम्मद अब तक जिंदा हो? तुम्हारा लाशा क्यों नहीं आया? अभी शबी ये ताबूत आएगी, ये वो तमन्ना है जो जैनब को थी, बेटा तुम्हारे ताबूत क्यों नहीं आए? ओनो मोहम्मद हाथ जोड़ते, अम्मा जब कभी मामू के पास गए कहा कि हमें भी मरने की इजाजत दीजिए, मामू ने मना कर दिया। तुम तो मेरे जैनब की निशानी हो, तुम तो मेरे जैनब के लाल हो, मैं तुम्हें किस दिल से मैदान जाने की इजाजत दूं? बस कई बार जब जैनब ने यह सुना, मेरे एक उस्ताद ये जुमला नकल करते थे, बस एक बार ओनो मोहम्मद को लेके हुसैन के खेमे में आए और एक बार कहा कि भाई हुसैन आज बहन भाई के घर में नहीं आई, आज बहन भाई के घर में नहीं आई, आज जाफर तैयार की बहू हैदर कर्रार के बेटे के पास आई है और इसलिए आई है कि मेरे बेटों को मरने की इजाजत दे दो। हुसैन ने कहा, जैनब तुम्हें तो सब पता है कि आज सबको मरना है, जो इस तरह तुमने कहा इजाजत दी। ओन को हुसैन ने गोद में लेके घोड़े पे बिठाया, मोहम्मद को अब्बास ने अपनी गोद में लेके बिठाया और क्या जिहाद किया। बहुत छोटे हैं बच्चे, 9 और 10 साल के, लेकिन क्या जिहाद किया। हैदर कर्रार का जिहाद याद आ रहा, जाफर तैयार का जिहाद याद आ रहा, लेकिन कब तक? एक वो वक्त आया कि दोनों शहजादे जख्मों से चूर जमीने करबला पे गिरे और आवाज दी, मामू हमारी मदद को आइए, बस इतना सुनना है। हुसैन अब्बास को लेके चले, फौजे यजीद भागी, एक लाशा हुसैन ने उठाया, एक लाशा अब्बास ने उठाया, और उधर ये लाशें खेमों की जानिब आए, और इधर यजीद की फौज ने खुशी के नकारे और शादियाने बचाए। जैसे ही आवाज खेमों में गई, बीबियों ने एक बार मातम शुरू कर दिया, हाय ऑन, हाय मोहम्मद। ये खुशी के शादियाने निशानी थी कि दोनों शहजादे मारे गए। ज़ैनब ने जो सैदानियों का ये बयान सुना, मिर्जा तबीर ने मरसिए की एक बैत में इसको नकल किया, जैसे ही ये सुना एक मरतबा तड़प के कहा, बीबियों खामोश हो जाओ, बाजे वालों की सदा जेर कनात आती है, कैसे लाशें मेरे बच्चों की बारात आती है, मुझे तो मुबारकबाद दो, मेरी कुर्बानी काम आई। हुसैन ये लाशें लेके खेमे में आते हैं, जैनब के सामने रखते हैं। जैनब ने देखा ऑन मर चुका है, मोहम्मद आखिरी सांसें ले रहा है। और एक बार हुसैन ने कहा, जैनब जब से ये बच्चे करबला आए हैं तुमने इन्हें गले से भी नहीं लगाया, आज मेरी ख्वाहिश है आखिरी सांसें ले रहा है, मोहम्मद को तो गले से लगा ले। जैनब झुकी, है तो माना, मोहम्मद को गले से लगाया, मोहम्मद आखिरी सांसें ले रहा है, महसूस किया माँ मेरे करीब आई, आंखें खोली और कहा, अम्मा अब तो हमसे खुश है ना, अब तो हमसे राजी है ना, तेरे मोहम्मद ने तेरे दूध का हक अदा कर दिया। मातम हुसैन, मातम हुसैन।
ज़ैनब ने रोकर कहा, औनो मोहम्मद मेरे मर गए खूं में औनो मोहम्मद मेरे मामू पे सदके हुए तेगो से जख्मी हुए खून में तड़पते हुए औनो मोहम्मद मेरे ब्याह न मैंने रचा दिल का न मतलब हुआ रोती रही मैं यहाँ औनो मेरे ज़ैनब ने रोकर कहा औनो मोहम्मद मेरे अरमा था बहू اس کم سنی میں چل بسے ماں سے جدا ہوئے بنت بتول کہتی تھی تھا میں دل و جگر دو پھول اس چمن میں تھے یار وہ کیا ہوئے خیمے ملائے دونوں کی لاشیں کہتے شاہ زینب تمہارے لال بھی ہم پہ فدا ہوئے شہ بول اے بہن تری غربت پہ میں نثار میدان میں ہائے قتل تیرے لاڈلے ہوئے زینب تمہاری کوئی نبر آئی آرزو دلہا نہ بننے پائے کہ تم سے جدا ہوئے بیٹوں کی لاش پر یہی زینب کے تھے کلام اب تم سے خوش جناب رسول خدا ہوئے ہے جواب ہونے نہ پائے کہ چل بسے ہے جواب ہونے न पाए के चल बसे, किस बेकसी से कत्ल मेरे दिल रुबा हुए। जैनबलाए लाशों की ले ले के कहती थी, जैनबलाए लाशों की ले ले के कहती थी, मैं खुश हूँ तुम जो माम पे अपने फिदा हुए। जैनब ने जैनब के दोनों लाल जो शह पर फिदा हुए, इस कम सिनी में चल बसे माँ से जुदा हुए। या हुसैन।